मोनी की आंखों में चमक आ गई। तो माँ, हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे, एक एक चाल सोचेंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। दुनिया कहेगी, देखो यही है वो लड़की जो अपने पति को भी नहीं निभा पाई और अब दूसरों पर नजर गड़ाए बैठी है। कामिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हम इस बात का पूरा फायदा उठाएंगे। विक्रम भी आखिर समाज में जीने वाला आदमी है, जब सबकी नजर में रहना गिर जाएगी तो उसे भी उससे दूरी बनानी पड़ेगी। मोनी ने गहरी सांस लेकर कहा, माँ मुझे तो अब मजा आएगा। रैना को लगा होगा कि वो अपनी जिंदगी की सच्चाई छुपा लेगी, लेकिन अब हम दोनों उसकी पोल खोल देंगे। और सबसे अच्छा तो ये है कि उसने ये राज खुद मुझे नहीं बताया, विक्रम ने भी छुपाया। इसका मतलब है कि ये बात उतनी ही संवेदनशील है, और जहां राज होता है वहीं से सबसे बड़ा खेल खेला जा सकता है। कामिनी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोली, सही सोच रही हो बेटा, यही असली राजनीति है, औरत की जिंदगी की सच्चाइयों को हथियार बना लेना। हम इसे धीरे धीरे तोड़ेंगे, उसे एहसास भी नहीं होगा कि कौन सा वार कब और कहां से आया। दोनों की आंखों में अब सिर्फ नफरत और षड्यंत्र की चमक थी। उस रात देर तक माँ बेटी कमरे में बैठी और बातें करती रहीं। कभी वे रैना की पुरानी आदतों पर हंसती, कभी उसकी पहनावे पर तंज कसती, कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी मानकर ठहाके लगाती। मोनी बार बार कहती, माँ देखना, एक दिन ऐसा सबक सिखाएंगे इसे कि सोच भी नहीं पाएगी कि उसके साथ क्या हुआ। और कामिनी बार बार दोहराती, हाँ बेटा, ये खेल अब हमारा होगा, अब की बार ये लड़की बच नहीं पाएगी। उनकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजती रही, लेकिन उस हंसी में स्नेह या गर्माहट का कोई अंश नहीं था, बस जहर था जो धीरे धीरे फैल रहा था। राजवंशी हवेली के बड़े आंगन में हल्की रोशनी जल रही थी। गाड़ियों की कतार, नौकर चाकरों की धाक दौड़ और मेहमानों की मौजूदगी ये साफ कर रही थी कि कोई बड़ी बात चल रही है। जैसे ही अखिल की कार दरवाजे पर आकर रुकी, अंदर खड़े नौकरों ने फुर्ती से गेट खोला। अखिल ने थका हारा बाहर कदम रखा, उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। घड़ी देखी, रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी माँ तुरंत आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी भी थी और चिंता भी। अखिल बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? देखो, शालिनी और उसका पूरा परिवार सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाश्ता, लंच सब यहीं किया इन्होंने। अब देखो, रात भी होने वाली है और तुम अभी पहुंचे हो। अखिल ने हल्की सी मुस्कान और भारी आवाज में कहा, सॉरी माँ, काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था, देर हो गई। इतने में शालिनी भी सामने आ गई। उसकी आंखों में इंतजार की झलक थी, लेकिन होठों पर मुस्कान बनी रही। कोई बात नहीं अखिल, हमें पता है तुम बिजनेस में कितने व्यस्त रहते हो। वैसे हमने पंडित जी से तारीख निकलवा ली है और डेट लगभग एक महीने बाद की है। ये सुनकर अखिल एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या सिर्फ एक महीने बाद? शालिनी के पिता बोले, हाँ बेटा, हमें लगता है जल्दी करना ही अच्छा है, शादी जितनी जल्दी होगी उतना ही मंगल है। अखिल ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। तभी बंगले के भीतर से धीरज राजवंशी यानी अखिल के दादाजी की गहरी आवाज आई, ठीक है बेटा, अब ज्यादा बातें मत करो, थके हुए होगे, जाओ फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। अखिल ने सिर झुका दिया, जी दादाजी। वो अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने कोट उतारकर सोफे पर फेंका और सीधे शावर के नीचे खड़ा हो गया। पानी की धारें गिर रही थीं, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था। इतनी जल्दी शादी? अभी तो हालात ही अलग हैं, मैं काम में डूबा हूँ। और उसके मन में रैना की सूरत उभर आई, वही बिखरे बाल, वही आंखों की मासूमियत। वो झटके से खुद को संभालना चाहता था, लेकिन तस्वीर बार बार लौट आती थी। क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं बस हालात से भाग रहा हूँ? वो खुद से ही सवाल करता रहा।